हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 21, 22 एंड 23। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा शवसि नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति वीणा यदर्पणं तस्मै सुभद्र शवसि नमो नमः। चिरात होणा द्रपुदिन्द पुल्कषा आभीर शुंभा यवनाक सादय येने च पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता च स्यसतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदत भूतैर्महद्भूत य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ति गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यां यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। तो यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से सृष्टि के प्रारंभ के विषय में पूछ रहे हैं, सृष्टि के सृजन के विषय में पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी अत्यंत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने श्लोक नंबर 20 में बताया, श्लोक नंबर 20 में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, स एष भगवान लिंग है तीन ब्रे तैरदोक्षज स्वलक्षित गतिर ब्रह्मन सर्वेशां ममच ईश्वर। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। वो तीनों गुणों से परे हैं, बल्कि लेकिन फिर भी वो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं। वो ऊपर हैं और तीनों गुणों से न्यारे हैं। और जीव क्योंकि तीन गुणों में उलझा हुआ रहता है, इसलिए भगवान को नहीं जान सकता। वास्तव में भक्तों, जो सबसे ज्यादा इस संसार में एक जीव के ऊपर अटैक करता है वो है प्रकृति के तीन गुण। और हमारे वैदिक शास्त्रों के अलावा और कहीं पर भी इन गुणों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, 3.27 भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति ही करवाती है, और गुणे कर्माणि सर्वश, और करवाती कैसे, गुणों के द्वारा, प्रकृति गुणों के द्वारा जीव को बाध्य कर देती है कोई कार्य करने के लिए। और जीव जो है वो अहंकार के वश में होकर यही सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, बस यही अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, और प्रकृति और गुणों को कुछ भी है ना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, इसीलिए बंधता है। लेकिन जब जीव इन गुणों से ऊपर उठेगा तो फिर क्या होगा, भगवान बताते हैं 14.26 में कि माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणांसं अतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम से यो अव्यभिचारेण भक्ति योग, जो जिसका मेरे साथ अव्यभिचार यानी एक भगवान के ऊपर जब केंद्रित हो जाता है जीव और भगवान की भक्ति करने लगता है, सगुणान समति तैतान, फिर वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी सबसे पहले जो चीज बता रहे हैं नारद मुनि को वो है कि ये गुण किस तरह से जीव के ऊपर अटैक करते हैं। जीव कार्य करता है इन गुणों की लपेट में आकर, और जीव को स्वतंत्रता दी जाती है कार्य करने की, और जब गुण इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं तो वो स्वतंत्रता के बावजूद भी उन्हीं गुणों के अंदर रहकर कार्य करता है, और फिर इसी तरह से जीव अपना भाग्य बनाता है। जैसे जैसे कार्य करता है वैसे वैसे उसके कर्मों के फल एकत्रित होते जाते हैं और उसके भाग्य में लिख दिए जाते हैं उसके विषय में। यहाँ पर हम श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम् विभूभूषुरुपादधे। कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम् विभूभूषुरुपादधे। कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम् विभूभूषुरुपादधे। कालम कर्मम स्वभावम च। कालम यानी सनातन काल, जो समय है। कर्म यानी जीव का भाग्य है, जीव जो कार्य करेगा उसी से उसका भाग्य बनेगा। स्वभावम यानी प्रकृति, ये तीन चीजें हैं, काल कर्म और स्वभाव, यानी सनातन समय, जीव का भाग्य और प्रकृति च। और उसके साथ मायेषु मायया स्वया। मायेषु यानी माया यानी शक्ति, ईश यानी नियंता, शक्ति के नियंता मतलब मायेषु मतलब भगवान श्री कृष्ण, मायया स्वया मतलब माया मतलब माया से, स्वया मतलब अपनी, भगवान श्री कृष्ण जो के प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं, वो अपनी माया से इन तीन चीजों का सृजन करते हैं। क्या? काल कर्म और स्वभाव। यानी काल समस्त जीवों के भाग्य, यानी जो पहले कर्म उन्होंने किए थे वो, और स्वभाव मतलब प्रकृति। काल कर्म और प्रकृति स्वभाव उसका विशेष सृजन करते हैं। और फिर क्या करते हैं? आत्मन यदृच्छया प्राप्तम। आत्मन यदृच्छया का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक, सारे जीवों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति होती है। जितने भी जीव भगवान ने बनाए अपनी माया शक्ति से, एक को हम बहुश्याम, एक भगवान है, और ये सारे जीव जो हैं वो भगवान ने प्रकट किए और फिर उनको स्वतंत्रता प्रदान करती है। भगवान स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि जैसे भी आपको कार्य करना है आप करो, और उस तरह से काल कर्म और स्वभाव के वशीभूत होकर जीव कार्य करता है, और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। यानी एक समय ऐसा होता है कि वो प्रकट होते हैं भौतिक जगत में। वैसे तो जीव आत्मा अनादि है, ऐसा नहीं है कि जीव आत्मा भगवान के शरीर से निकले हैं ऐसे, नहीं, वो अंश होते हुए भी भिन्न अंश है। भगवान के शरीर से प्रकट निकाले नहीं गए, भगवान का एक अंश है जो कि तटस्थ शक्ति के रूप में है, लेकिन इस संसार में वो प्रकट होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि भगवान उन्हें पुनः अब विलीन कर देते हैं, फिर वो सब कारण दक्षिण विष्णु में चले जाते हैं। ये बातें आगे बताएंगे। अनुवाद देखिए, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, ध्यान से सुनना है कृष्ण प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की से। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक संसार का सृजन जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। यानी यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सृजन और संहार जो है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। ना जाने कितने असंख्य बार हम पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, अलग अलग लोकों में जा चुके हैं, क्योंकि जीव तो अनादि है ना, अनादि काल से जीव बार बार जन्म ले रहा है, बार बार उसकी मृत्यु हो रही है, अनादि काल से उसके संबंधी हैं, अनादि काल से वो भौतिक जगत में आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक जीव उस आनंद घन रस स्वरूप आनंद कंद भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ता है, तब तक वो आनंदित नहीं होता है। इसलिए ये सृजन और संहार तो मौसम की तरह होते रहते हैं, जैसे कभी सर्दी का मौसम आता है, फिर गर्मी का आता है, फिर वापस सर्दी का आता है, फिर ये होता रहता है ना। हमें याद तो नहीं है ना कि किस तरह से ये मौसम चेंज हो रहा है, कब से शुरू हुआ है, ये तो जब से है तब से है ही है ना। उसी तरह से जीव भी अनादि काल से बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। इस बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है। ये भौतिक सृष्टि कैसे है, जैसे बादल आ जाता है हमारे आकाश के बीच में, तो हमें वास्तविक आकाश नहीं दिखता, बादल दिखता है। उसी तरह ये भौतिक जो पूरी प्रकृति है वो आध्यात्मिक आकाश के ऊपर एक बादल की तरह है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है, जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महातत्व के बादल से आच्छादित हो जाता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी महातत्व से किस तरह से प्रकट होते हैं सारी चीजें उसके विषय में बताएंगे। हो क्या रहा है, श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक आकाश है वो तो आध्यात्मिक आकाश के सामने एक बादल की तरह है, और वास्तविक आकाश क्या है, जो आध्यात्मिक आकाश है, और वो ब्रह्म ज्योति से भरा रहता है। इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महातत्व के बादल से आच्छादित होता है। अब ये जो असीम आकाश है उसका एक अंश जो है वो भौतिक सृष्टि स्वरूपी महातत्व जो है, भौतिक सृष्टि है, महातत्व है या प्रकृति है, उस के बादल से आच्छादित हो जाता है। फिर वो पूरा जो जगह है ना वो पूरी महातत्व से भर जाती है, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है। और फिर भगवान इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीव को छोड़ दिया जाता है। जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रवृत्ता जताना चाहते हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है, भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव को स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन फिर भी जीव को भगवत आदेश भी बताए जाते हैं, बुद्धि दी जाती है जीव को, और शास्त्रों के अनुसार जीव को पता होता है कि क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। जो और भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताने चाहते हैं जीव संसार में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं लेकिन बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब ये जो तीन गुण है ना, उनके नियंत्रण में होकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, और जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुत्ता जताना चाहते हैं। यहाँ पर भौतिक जगत में जीव चाहता है कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, मैं स्वामी बनूं, मैं भोक्ता बनूं, तो वो अपनी प्रभुत्ता जमाना चाहता है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी सृष्टि के बारंबार सृजन और संहार को ऋतु के अनुसार बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद्गीता 8.19 में की गई है। श्रीमद् भगवद्गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 19 में भगवान कहते हैं, भूत ग्राम स ईवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अर्थात जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय वत विलीन हो जाते हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, कंटिन्यूस चलता रहता है। सृजन होता है, संहार होता है, सृजन होता है, सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करने के लिए करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर संसार में जीव आता है, अपने इच्छा के अनुसार कार्य करता है और जैसा जैसा कार्य करता है वैसा वैसा उसका भाग्य निर्माण होता है। आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि भगवान की इच्छा है, वो इसलिए है क्योंकि आपने इसी वस्तु को, इसी व्यक्ति को अपने भाग्य में लिखवाया है। यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी की बात है कि आप जो भी प्राप्त करते हो वो आप अपने कर्मों के अनुसार, जैसे एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो पूरा का पूरा आपके जो आपने लिखा है क्वेश्चन पेपर पे उसके अनुसार ही आपको मार्क्स मिलते हैं और उन्हीं के अनुसार आपका रैंक बनता है। ये बात समझ में आती है ना। एग्जामिनेशन में मार्क्स के लिए हम टीचर को दोषी नहीं दे सकते कि भाई टीचर ने मुझे मार्क्स कम क्यों दिए, क्योंकि टीचर ने तो मार्क्स उतने ही दिए जितने कि आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया है। उसी तरह से इस संसार में आपको यदि कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, ये आपका भाग्य है, लेकिन भाग्य बनाने वाला भगवान नहीं है, भाग्य बनाने वाला ब्रह्मा जी नहीं है। भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं, हम अपने भाग्य को अपने कर्मों के अनुसार बनाते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुमान से सोचने के आदि हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तविक सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ, जीव कब आए, वो तो कहीं से पता नहीं चलेगा, क्योंकि जीव अनादि है और सृष्टि बारंबार पुनः पुनः उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि कहलाता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले पहल कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृजन की ही अवधि 8,64,00,000,000 वर्ष है। 8,64,00,000,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक संपूर्ण दिन है, यानी 12 घंटे रात के और 12 घंटे दिन के, 4,32,00,000,000,000 वर्ष का दिन और 4,32,00,000,000,000 वर्ष की रात। तो एक ही एक जब कल्प होता है वो ही इतना बड़ा है, तो फिर जब से सृष्टि बनी है उसका हिसाब किताब कहीं पर शास्त्रों में नहीं लिखा गया, लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं।
जैसे अग्नि के अंदर प्रकाश भी होता है, उष्मा भी होता है, ये सब अग्नि की है, उसी तरह भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की ही शक्ति है। अतएव भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है। जो कुछ भी संसार में हमें दिख रहा है, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान निराकार स्वरूप में विद्यमान है। इसी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि अतएव भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित होती है। संसार भगवान के ही स्वरूप पर आश्रित है तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं, फिर भी वो सृष्टि के अंदर प्रत्येक वस्तु में होते हुए भी भगवान पृथक हैं। अतएव किसी को गलत तरीके से ये नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है वो निर्विशेष रूप में प्रत्येक जगत के प्रत्येक वस्तु और कण में होते हैं तो फिर भगवान का कोई रियल स्वरूप नहीं होता है। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.5-7 में बहुत ही सुंदर रीति से भगवान स्वयं बताते हैं। भगवान कहते हैं 9.5 में, न च मत्सानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्तो ममात्मा भूत भावना। अर्थात मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझमें स्थित नहीं है, जरा मेरे इस योगेश्वरी को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथा आकाश से स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणी भूतानि मस्थानित्युपधारया। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी हुई है, लेकिन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रखा है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमह। और उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हुए होते हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आगार है, तो भी ये आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। आकाश पर टिका हुआ है प्रत्येक वायु जो है आकाश, लेकिन फिर भी आकाश का एक अलग अस्तित्व है। उसी तरह संसार भगवान के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन भगवान का एक अलग अस्तित्व है, एक स्वरूप है। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं तो भी वे सदैव पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं, नारायण परो व्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से अद्भुत होती है। सारे व्यक्तिगत जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में एक से हैं। लेकिन चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतएव वे भगवान से भिन्न होते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से संसार के ये जो गुण हैं वो जीव के ऊपर किस तरह से प्रभावित होते हैं और भगवान किस तरह से समस्त जीवों का आश्रय होते हुए भी पृथक एक वास्तविक स्वरूप रखते हैं, और जीव क्योंकि संसार से मोहित होता है, प्रभुत्व जताना चाहता है और ऐसे कार्य करता है कि उसे पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है, वो अपने भाग्य का निर्माण करता है अपने कर्मों के द्वारा। इसको बहुत ही सुंदर रीति से समझाया। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, कालात गुण व्यक्ति कर परिणाम स्वभावत कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत। कालात् गुण व्यक्ति करह परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत। कालात् गुण व्यक्ति कर, कालात् मना सनातन काल से, सनातन समय समय से गुण व्यक्ति कर, गुण व्यक्ति कर प्रतिक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतर होता है, गुण जो है वो प्रभावित होते रहते हैं। परिणाम स्वभावतः, परिणाम मतलब रूपांतर, स्वभावतः मतलब स्वभाव से। कर्मणो जन्म महत्व, कर्मणो जन्म, कर्मों से जन्म मतलब सृजन होता है महत्व, महत्त्व का। और पुरुषाधिष्ठात यानी भगवान के पुरुष अवतार के कारण अभूत, अभूत का मतलब है हुआ। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि सृष्टि स्टार्ट कैसे हुई। पहले बताए पुरुषाधिष्ठितादभूत का मतलब होता है प्रथम पुरुष अवतार यानी कारण दर्शाए विष्णु उत्पन्न होते हैं, पूर्व यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंतम से। और उसके बाद क्या है, उसके बाद महत्त्व, कर्मणो जन्म महत्त्व। पहले प्रथम पुरुष अवतार कारण दर्शाए विष्णु, उसके बाद महत्त्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। महत्त्व में क्या है, 24 वस्तुएं हैं, पंच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार और गुण, ये सब महत्त्व में आ जाता है। पहले पुरुष अवतार है, उसके बाद महत्त्व है, और उसके तब काल प्रकट होते हैं और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं, फिर काल प्रकट होते हैं। कालात गुण व्यक्ति करा, काल से गुण प्रकट होते हैं, और उसके बाद प्रकृति, उसके अंदर महत्त्व, और है ना सबसे पहले कारण दर्शाए विष्णु। अनुवाद देखिए, प्रथम पुरुष अवतार कारण दर्शाए विष्णु के बाद महत्त्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की अवधि से होता है, और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे फिर क्रमशः समेट दिए जाते हैं। भगवान अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से सब कुछ को उत्पन्न करता है और फिर अपनी शक्ति से क्रमशः समेट लेते हैं, और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। समय होता है जब प्रलय होती है तो परमेश्वर के यानी कारण दर्शाए विष्णु के शरीर में सारी जीव आत्माएं संरक्षित होती हैं। काल प्रकृति का पर्यावाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। काल प्रकृति का पर्यावाची है मतलब काल तो प्रकृति या कुदरत का सेम मायने है, काल या कुदरत का मतलब एक ही है और भौतिक सृष्टि यानी जो भौतिक ये मटेरियल वर्ल्ड है उसके सिद्धांतों का रूपांतरण स्वरूप है, यानी उसके जो कार्य है भौतिक ये जो प्रकृति है जो भी कार्य करती है उसका एक अलग स्वरूप है, रूपांतरित स्वरूप यानी उसका एक चेंज स्वरूप है ये जो काल है वो। और इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। जो भी प्रकृति वो उसके अंदर जो भी चेंजिंग होती है उसी तरह से जो भी गुण ना प्रबल होता है उसी तरह से जीव कार्य करता है और इस भौतिक जगत में मुख्तलिफ एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्य होते रहते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या कि जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है। जो भी कार्यकलाप है उसका सहज प्रवृत्ति यही है, ये जो प्रकृति है इस प्रकृति के प्रभाव से ही जीव कार्य करता है, इन गुणों के प्रभाव से ही जीव कार्य करता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। अगर कार्य हो गया तो जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन होगा, प्रतिफल निकलेगा। तो मूलतः यह सब परमेश्वर के कारण है, मूलतः वास्तव में भगवान के कारण ही सब कुछ हो रहा है। भगवान ने ही ये सृष्टि बनाई, भगवान ने ही महातत्व बनाए, भगवान ने ही गुण बनाए, भगवान ने ही जीव को उत्पन्न किया, तो ये सब भगवान के कारण। इसीलिए वेदांत सूत्र भागवत का प्रथम परम सत्य को समस्त सृष्टि के मूल के रूप में स्वीकार करके होता है। भागवतम कहाँ से स्टार्ट होता है? जन्मादिस्यतान वयादितरतस चार्थे शुभे क्या स्वराल। इस संसार में जो कुछ भी है चाहे वो किसी भी स्वरूप में है वो भगवान की कृपा है, वो भगवान का ही रूप है, भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा ही इस संसार का सृजन होता है, प्रलय होता है और पालन होता है। और ये भगवान सबके विषय में जानते हैं सारे विज्ञ स्वराट, भगवान स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव के कार्यकलापों को जानते हैं, उनके अनुसार उनको उनके कर्मों का फल प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 23 में भगवान ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रदानस्त्व भवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रमाद तमः प्रधानस्त त्वभवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः महतस्तु विकुर्णवा। महतत्व जो महतत्व है ये 24 तत्व जो है तू, लेकिन विकुर्णवाणात्, विकुर्णवाणात् का मतलब है रूपांतरित होकर। ये जब चेंज होता है तो उसमें क्या होता है? रजह सत्वो प ब्रह्मितात्, रज मतलब रजोगुण, सत्व मतलब सत्वगुण, उपब्रह्मितात् का मतलब होता है बढ़ जाते हैं, बढ़ जाता है। और पहले रजोगुण जो है वो सत्वगुण से ऊपर आ जाता है। उसके बाद तमह, तमह प्रधानस्त्व भवत्, तमह यानी तमोगुण, प्रधानस्य यानी प्रमुख होने से तू, लेकिन अभवत घटित हुआ। द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, द्रव्य मतलब पदार्थ, ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान, क्रियात्मक मतलब प्रधानतः भौतिक कार्यकलाप। अनुवाद, महतत्व के क्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब महतत्व में ये जो सारे वस्तुएं हैं पांच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच इंद्रियों के पीछे, जब ये इनके अंदर महतत्व जो है वो जब प्रैक्टिकल होता है, उसमें कार्य कलाप शुरू हो जाते हैं, इंद्रियां अपने कार्य करते हैं और है ना गुण अपने कार्य करते हैं, तो क्या होता है भौतिक क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर एक्टिविटीज होने लगती हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या होता है, महतत्व विकुण्याद रजसत्व सत्वगुण तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। पहले तो सबसे पहले गुण प्रकट होते हैं और है ना जब एक्टिविटीज होती हैं तो सत्व तथा रजोगुण का रूपांतरण होने और बाद में तमोगुण के कार्यकलाप पदार्थ उनका ज्ञान और भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल देखा जाए तो सिर्फ गुण जो होते हैं वो ही हमसे सारे कार्य करवा रहे होते हैं और उसके श्रील प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं कि सभी तरह की अभिव्यक्तियां सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। जो कुछ भी संसार में हो रहा है हमें दिख रहा होता है ना, प्रैक्टिकल जब कोई कार्य करता है कोई, उसका मेन कारण क्या होता है, रजोगुण, मतलब इच्छा होती है। रजोगुण से हमारे हृदय के अंदर इच्छा आती है कि हम ये कार्य करें। तो जो कुछ भी हो रहा है भौतिक सृष्टियां हैं न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। महतत्व भौतिक सृष्टि का तत्व, महतत्व जो है मूल कारण जो है वो महतत्व मूल कारण है और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा तमोगुण प्रमुख होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, ये जो गुण महतत्व में 24 वस्तुएं हैं, लेकिन सबसे पहले जो क्रिया करते हैं प्रैक्टिकली जो कार्य करते हैं वो गुण होते हैं, पहले रजोगुण और तमोगुण, बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। वो रजोगुण प्रधान होता है कार्य करना है और फिर जीव जो है वो धीरे धीरे तमोगुण में लिप्त हो जाते हैं। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इन गुणों के स्वामियों के विषय में बताते हैं कि कौन प्रतिनिधि कर रहा है। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, इसलिए सृजन किसी भी वस्तु का होता है ना वो रजोगुण से होता है। संसार में हम देखें 99% जो है संसार रजोगुण के प्रभाव से कार्य कर रहा है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटीज चाहिए, हर किसी को कुछ न कुछ कार्य करना है तो वो रजोगुण करवाता है। रजोगुण के द्वारा जीव कार्य करता है, रजोगुण इच्छा उत्पन्न करता है, उसी के द्वारा जीव जो है वो कार्य करता है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिनिधि हैं, तो विष्णु सत्वगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। अब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इनके देवता हैं जो कि अपने अपने गुणों के को जो है वो बल प्रदान करते हैं या उन गुणों के कारण अपना कार्य करते हैं। अब ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, सृजन करना, तो सृजन करते हैं रजोगुण को धारण करते हैं। शिव जी का कार्य क्या है, प्रलय करना, तो तमोगुण को धारण करते हैं और प्रलय करते हैं। और भगवान का कार्य क्या है, पालन करना, तो भगवान विष्णु जो है वो सत्वगुण को धारण करके संसार का पालन करते हैं। अभी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता रूप शिव जी, इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण क्रियाशील होते हैं। कोई समय ऐसा आता है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसा समय होगा, जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। जैसे जैसा विकास होता जाता है जीव का, उसी तरह से जो गुण है वो अलग अलग गुण जीव के ऊपर कार्यशील होते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताए कलयुग में
जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। यहाँ संसार में क्या हो रहा है आज कल युग में, जीव बहुत ज्यादा सिविलाइज होना चाहता है, बहुत ज्यादा प्रगति करना चाहता है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट चाहता है। तो इस एडवांसमेंट के चक्कर में, इस एजुकेशन के चक्कर में, इस भौतिक बढ़ने के आगे बढ़ने के चक्कर में क्या होता है, जीव अपने असली स्वरूप को, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जीव को, आज हम देखें किसी को इस बात पर यकीन नहीं है कि हम वास्तव में आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान को प्राप्त करके, भगवान से प्रेम करके ही आनंदित होते हैं। ये बात केवल सुनने की हद तक लिमिटेड लगती है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। और इसका कारण क्या है, रजोगुण कारण है, क्योंकि रजोगुण में हम अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, अपनी कोई ना कोई इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। अभी लेकिन श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि सत्वगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जा सकती है। जब सत्वगुण थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जैसे हम जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, तो थोड़ा सा उसके अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की सिर्फ झलक दिखती है। किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सत्वगुण में मिलावट हो जाती है, लेकिन फिर भी रजोगुण जो है वो बहुत ज्यादा जोरावर है, इसलिए हमारे सत्वगुण को वो शुद्ध नहीं रहने देता, वो रजोगुण की तरह उसको, रजोगुण की उसके अंदर मिलावट कर ही देता है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, भौतिक ये जो गुण है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जब तक वो इन गुणों के जंजाल से छूटेगा नहीं, तब तक वो अपने लक्ष्य को, अपने स्वरूप को नहीं समझ सकता। वास्तव में ये गुण जो है वो आत्मा को अटैक नहीं कर सकते हैं। ये गुण तो शरीर के ऊपर ही है, क्योंकि प्रकृति के ही गुण है, आत्मा के अंदर गुण नहीं है। आत्मा तो निर्गुण है क्योंकि वो भगवान का अंश है, लेकिन आत्मा क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठी है, इस प्रकृति के अंदर आकर खेद हो गई और विस्मरण हो गया अपनी वास्तविकता का, इसलिए वो इन गुणों को लांग नहीं पाती है। जिससे जीव के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। वो स्वयं को नहीं जानती तो फिर भगवान को क्या समझ सकती है। तो भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सत्वगुण में स्थित क्यों न रहे, तो भी वो भगवान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिलावट हो जाती है रजोगुण की। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ यानी आदिभूतम है, स्थूल पदार्थ है आदिभूतम, उनका पालन आदिदैवम है, और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले आध्यात्ममम है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तीन, ये जो तीन गुण हैं, वो तीनों नियम जो है प्रमुख गुणों के कारण काम करते हैं। क्या क्या चीजें हैं, भौतिक ये जो आदि ये जो पदार्थ हैं भौतिक जगत के, वो आदिभूत हैं, उनका पालन क्या है आदिदैव है, और कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले आध्यात्मम है। यहाँ पर इस बात को श्री प्रभुपाद जी बहुत ही आसान करके बता रहे हैं कि भौतिक जगत में ये तीन नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल यानी कच्चा माल मतलब आदिभूतम। आदिभूतम क्या है, पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। भौतिक जगत के ये पहले कच्चा मतलब ये जो इंद्रियां हैं
और इंद्रियों की इच्छाओं की नियमित पूर्ति। पूर्ति क्या है? वो कार्य है, हम जो कार्य करते हैं इंद्रियों को आनंद देने के लिए, या फिर संसार में कोई भी कार्य करते हैं, कार्यकलाप किस लिए होते हैं? वो हमारी कर्मों को, कर्मों के रिएक्शन बनाने के लिए होते हैं। जो जो कार्य हम करेंगे उसके अनुसार हमारा नसीब बनता जाएगा। और आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख हैं, पर एक क्या है? कच्चा माल, उसकी नियमित पूर्ति, तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। क्योंकि जीव को अपनी वास्तविक स्थिति पता नहीं है, इसलिए वो जीव क्या करता है? मोहग्रस्त है और वो इन्हीं भौतिक वस्तुओं को से खुद को आनंदित करने के लिए कार्य करता है, और इन्हीं कार्यों के कारण उसको बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो इस तरह से इस प्रकृति के स्टार्ट होने का यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो नारद मुनि को बता रहे हैं। इसी चीज को आगे ही पढ़ेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं इन विषयों को एज इट इज रीड करके बता सकूं, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बातें हैं जो कि ना इतना डिटेल से बता सकना मेरे अंदर योग्यता नहीं है। समझने की बात सिंपल है कि भगवान जो है वो इस सृष्टि की रचना करते हैं, और इस सृष्टि में गुण होते हैं जिसके कारण जीव जो है वो प्रभावित हो जाता है और कार्य करने लगता है, जिस गुणों के अट्रैक्ट के कारण उसे बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। और जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान कहते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दूरत्यया, ये जो मेरी गुणमयी प्रकृति है ना उसको पार करना बहुत कठिन है, परंतु मामे वयो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे ना तो इस गुणमयी प्रकृति से, इस माया से पार हो जाओगे। और भगवान की शरण में आने का एक ही तरीका है, हम भगवान के नाम को प्रेम और श्रद्धा से जप करें, भगवान के पवित्र कथाओं का श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम, ये एक एक शब्द जो है वो हमें भगवान की ओर लेकर जा रहा है। परीक्षित महाराज ने क्या किया था? कुछ नहीं, वो बैठे थे और श्रवण कर रहे थे, वही कार्य हम कर रहे हैं। तो हमें भले नहीं खबर है कि इसका क्या प्रभाव होना चाहिए, लेकिन भगवान जानते हैं कि भगवान की कथा का प्रभाव है भगवत प्राप्ति। तो यदि हम प्रेम से भगवान की इन कथाओं को श्रवण करेंगे, भागवतम महापुराण में श्रद्धा रखेंगे, तो अवश्य हृदय की मलिनता दूर होगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो आप सबसे प्रार्थना है, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।